श्री गौरनिताय मंदिर में भगवद गीता के रविवार के सत्संग में आइए भगवान के चरणों का ध्यान करेंगे। श्री राधेश्याम नमः। तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करते हुए मेरे पीछे दोहराइए। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे
राम हरे हरे।
तो भगवद गीता का 18वां अध्याय चल रहा है। 18वें अध्याय में सारे गीता का सार दिया गया है। गीता पूरी का समरी है या सार है। गीता तो 17वें अध्याय में समाप्त हो गई, लेकिन पूरी गीता की समरी फिर 18वें अध्याय में दी गई है। और जो गीता वैसे प्रचलित भाषा में मिलेगी उसमें इसके नाम लिखा होगा मोक्ष संन्यास योग। मोक्ष संन्यास योग, मोक्ष का भी संन्यास, मोक्ष का भी संन्यास करना, मतलब मोक्ष से भी ऊपर उठना, इसका नाम रखा है मोक्ष संन्यास योग। साधारणतः गीता में आपको ये नाम मिलेगा मोक्ष संन्यास योग। तो आज श्लोक कौन सा पढ़ेंगे? 57। हो गया। ओके तो 57 को पढ़ते हैं। चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः बुद्धियोगं उपाश्रित्य मच्चित्त सततं भव। और इसके बाद का दूसरा पढ़ लीजिए एक बार, 58 भी। मचित्त सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यसि अथ चेत त्वम् अहंकारान् न श्रोयसि नक्षसि न श्रोष्यसि विनक्षसि। तो बात चल रही है असल में, पहले जो विशेष रूप से 54 श्लोक है 54, उसमें ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा ये श्लोक है। इसमें ब्रह्म के स्तर के ऊपर आदमी जब पहुंच जाता है तो संसार में उसके लिए कुछ चीज पाने की इच्छा नहीं होती है, किसी चीज के जाने के ऊपर उसको कोई संकट नहीं होता है। ऐसी स्थिति जब प्राप्त होती है वहां से फिर आगे भक्ति शुरू होती है। तो ब्रह्म भूत के स्तर के ऊपर पहुंचने के बाद भक्ति शुरू होती है। तो मोक्ष संन्यास का मतलब जो मोक्ष चाहते हैं वो ब्रह्म तक पहुंचना चाहते हैं। अब ब्रह्म को भी छोड़ के मद भक्तिम लभते पराम, मेरे भक्त उससे भी आगे के स्थान को प्राप्त करता है। 54 श्लोक का आखिरी शब्द देखिए, 54 श्लोक का मद भक्तिम लभते पराम। मद भक्तिम मेरी भक्ति, लभते प्राप्त करते हैं पराम परम पद को। तो ब्रह्म के पद के ऊपर पहुंचना ये मोक्ष का लक्ष्य है। मोक्ष वाले क्या चाहते हैं? ब्रह्म प्राप्ति, ब्रह्मलीन हो गया, ये मोक्ष है। तो मोक्ष से भी ऊपर उस स्तर के ऊपर पहुंचने के बाद भक्ति शुरू होती है। तो भक्ति की शुरुआत वहां से होती है। अब यहां ब्रह्म की बात हुई, ब्रह्म प्राप्ति हो गई। अब थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे तो परमात्मा प्राप्ति होगी, 2-3 श्लोकों के बाद परमात्मा प्राप्ति होगी। ये श्लोक सबने पढ़ा है, अहम सर्वस्याहम हृदय सन्निविष्टो ना, यहाँ है ये श्लोक है। आपको परमात्मा प्राप्ति का भी एक बार बता दें, 61। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ये परमात्मा प्राप्ति है। हा? और इसके पीछे वाले में तो उसके शरण में जाओ परमात्मा के, ये परमात्मा प्राप्ति है। और 65 में भगवत प्राप्ति है, भाव मद भक्त 65। तो ये ऐसे देखना है, ब्रह्म प्राप्ति, परमात्मा प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, ये 3 स्तर 1, 2, 3 एक से ऊपर बढ़ता जा रहा है। तो अब भगवान क्या कह रहे हैं, आज का श्लोक जो हम पढ़ रहे हैं उसमें कह रहे हैं चेतसा मतलब तुम्हारी चेतना सर्व कर्माणी सारे कर्मों को करते हुए मई सन्यास्य मेरे ऊपर छोड़ दो। मत परह मतलब मेरा शरणागत होकर, मत परह ऐसा सारी गीता का सार है। तो ऐसा श्लोक आपको गीता के 3 अध्याय में मिलेंगे, क्यों कर्मों की बात चल रही, बिल्कुल ऐसा ही श्लोक वहां मिलेगा। मई सन्यस्य सर्वाणी कर्माणी, उधर ऐसे लिखा है, मई सन्यस्य सर्वाणी कर्माणी आत्मचेतसा, वहां ये शब्द लिखे हुए। इसका अर्थ ये है कि सारे कर्म करते हुए मेरे ऊपर छोड़ दो, काम करो लेकिन मेरे ऊपर छोड़ दो, मेरा शरण ले लो। बुद्धि योगम उपाश्रित्य, मेरा शरण लो, मेरे शरणागत हो, और बुद्धि योग के द्वारा, बुद्धि योग को प्रभुपाद ने यहां अनुवाद किया है भक्ति के द्वारा। बुद्धि योग का मतलब है भक्ति के द्वारा, प्रभुपाद ने लिखा है भक्त बुद्धि भक्ति, भक्ति के काम बुद्धि योग को। उपाश्रित्य, आश्रित्य मतलब आश्रय ले लो, बुद्धि योग का आश्रय ले लो। मद चित्त, तेरा चित्त मुझ में लगाओ, कब तक लगाएं भगवान? सततम, सदा के लिए। भव मतलब लगाओ, सदा के लिए तुम्हारा मन मुझ में लगा रहे, सारे काम मेरे ऊपर छोड़ दो, मेरा शरण ले लो, बस तेरा काम हो गया। अनुवाद क्या लिखा है, सब कामों में मेरे ऊपर निर्भर रहो, सारे कर्म चलते हैं उसके मेरे ऊपर निर्भर रहो और मेरे ही सुरक्षा में तुम सारे काम करते रहो, अंडर माय प्रोटेक्शन। ऐसी भक्ति के काम से आप मेरे, भगवान कहते बी फुल्ली कॉन्शियस ऑफ मी, बी फुल्ली कॉन्शियस ऑफ मी मतलब पूर्ण रूप से कृष्ण भावना में भावित होकर सब काम भगवान के ऊपर छोड़ दो। संस्कृत में मत पर शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, प्रभुपाद जी लिखते हैं, इसका मतलब भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित होकर काम करना चाहिए। काम सब करना पड़ेगा लेकिन भगवान के ऊपर आश्रित होकर सारे काम करना चाहिए। भगवान यहां बात ये कर क्यों रहे हैं ऐसी, अब कौन सा काम अर्जुन से कराना है जिसके लिए भगवान कह रहे हैं, युद्ध कराना है, युद्ध कराना है अर्जुन से, तो भगवान को युद्ध कराना है और उस युद्ध कराने में भगवान कहते तू मेरे ऊपर छोड़ दे और तू सिर्फ मेरा ध्यान कर, ऐसा एक श्लोक और भगवान ने कहा है, तस्मात सर्वेशु कालेशु मा मनुसमर युद्ध च सततम मच्चित सततम भव मद चित्त, मतलब मेरा चिंतन सततम सदा के लिए करते रहो, और वहां का है सर्वेशु कालेशु सब समय मेरा ध्यान करते हुए युद्धश्च अपने युद्ध को करो, युद्ध के कार्य को करो अथवा कोई भी कार्य हाथ में उसको करते रहो लेकिन मेरा स्मरण करते हुए करते रहो, मेरे ऊपर छोड़ के करो, मेरा आश्रय लेके करो। क्यों? क्योंकि आप फिर उसके फल में, मैं उसके फल के बंधन में नहीं पड़ोगे। सिर्फ ये सारा कहने का भगवान का आश्रय ये है कि आप मेरे ऊपर छोड़ देंगे तो उस कर्म के फल का बंधन आपको नहीं बांधेगा क्योंकि मैं उसकी जिम्मेवारी लेता हूं। तो अर्जुन के मैं आपके ऊपर सारे काम छोड़ दूं, प्रभुपाद ने एक बात लिखी है कि सभी काम भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए, वैसे हम भगवान के नित्य दास है, भगवान हमारे मालिक हैं, जैसे वो कहेंगे जैसे हमको काम करना चाहिए। तो भगवान, अब कोई ये कह सकता है कि अर्जुन का सामने भगवान खड़े थे और भगवान ने अर्जुन को कहा और अर्जुन ने भगवान के लिए कर दिया तो हमारे सामने भगवान है नहीं, तो हम ऐसे कैसे मान लें? तो प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे ये भगवत गीता की शिक्षा साक्षात भगवान ही आपको आदेश दे रहा है। तो भगवत गीता की शिक्षा का सहारा लेकर, भगवान के प्रतिनिधि का सहारा लेकर काम करने से वही फल मिलेगा जो अर्जुन को भगवान को साक्षात आदेश से काम करने से फल मिला। तो ये विशेष भावार्थ में इस बात के ऊपर ध्यान रखा गया है, इफ वन एक्स अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ कृष्णा इन दिस बुक, इस भगवत गीता के अंदर जो निर्देशन है उसके अनुसार काम करेगा तो भी वही फल मिलेगा जो अर्जुन को मिला, और दूसरा एज वेल एज अंडर द गाइडेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्णा, और उसी वक्त भगवान के प्रतिनिधि गुरु के आदेश से काम करने से भी वही फल मिलेगा। और फिर प्रभुपाद जी एक सावधान करते हैं कि अपनी इच्छा से जो करो उल्टा सीधा और कहो कि नहीं ये भगवान ने कराया, ऐसा मत करना। एक लाइन ऐसे लिखी है विशेष रूप से, एक बार कोई भक्त बहुत तेज गाड़ी चला के एक्सीडेंट करके आया, फिर प्रभुपाद के सामने आया, प्रभुपाद ने कहा तो एक्सीडेंट हो गया, बोला क्या करें कृष्ण की इच्छा है, बोला मूर्ख तुम्हारी मूर्खता कृष्ण के ऊपर क्यों तोप रहे, तब का इफ यू गो बियॉन्ड 45 माइल्स एन आवर यू आर रिस्पॉन्सिबल, कृष्ण इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, आप एक लिमिट है, जब सरकार कहती है तो इस 90 किलोमीटर से ज्यादा मत चलाओ, जब सरकार का आदेश तोड़ते हो तो एक्सीडेंट करोगे तुम जिम्मेवार, तो भगवान का आदेश तोड़ के काम करोगे तो तुम जिम्मेवार। तो इसका एक भावार्थ में थोड़ी लाइन लिखी हुई है कि अपनी मन से जो चाहे वो करो और फिर कहो नहीं नहीं इसका फल भगवान को अर्पण करा, ऐसे करने की जरूरत नहीं है, जो निर्धारित नियम है उसके अनुसार काम करो। सर्व कर्माणि का मतलब है, तो हम पहले कहे कर्म अकर्म विक्रम तीन की परिभाषा पहले हो चुकी है, कर्म का मतलब जो शास्त्र में बताया गया है वो कर्म, विक्रम का मतलब है जो नहीं करना चाहिए वो कर्म, जो नहीं करना चाहिए उसको नहीं करना चाहिए, निषेध कर्म विक्रम कहलाता है। और अकर्म का मतलब है काम करते हुए उसके बंधन में नहीं पड़े। तो ये असल में सारे काम करते हुए बंधन में नहीं पड़े उसका रास्ता यहाँ बताया गया। इसके बाद वाले श्लोक की भावार्थ प्रभुपाद ने बहुत अच्छा लिखा है, मत चित्त सर्व दुर्गाणी, अगर तेरा चित्त मुझ में लगा रहेगा तो सारे ही दुर्गाणी का मतलब है जो मुश्किल है, जो कठिनाई है, जो संकट है, जो रुकावट है, जो अवरोधिक बातें हैं, वो क्या क्या होगा, मद प्रसादा तरिष्यसी, मेरी कृपा से, मद प्रसादा मतलब मेरी कृपा से उन सारे रुकावटों को आप पार कर जाओगे। वो मत चित्त सर्व दुर्गाणी, दुर्गाणी का अर्थ क्या लिखा है, बाधाएं, मुश्किलें, रुकावटें जो रास्ते में आएंगी वो मेरी कृपा से उनसे तुम पार हो जाओ। काम करने में जो तुम्हारे को रुकावटें आएंगी, तुमने मेरे ऊपर छोड़ दिया है, मेरा शरण लिया है, तो मेरी कृपा से तुम उसको पार कर जाओगे, ये आश्वासन भगवान दे रहे हैं। और फिर क्या कहते हैं, अथचा, फिर दूसरी लाइन सावधानी वाली, मेरा ध्यान करते हुए, मेरे को चित्त में रखते हुए अगर तुम काम करोगे तो सारी मुश्किल से पार हो जाओगे, और अगर तू अपने अहंकार का आश्रय लिया कि मैं ऐसे समझता हूं ठीक है, तो निश्चित रूप से तुम मेरी बात अगर नहीं सुनोगे, न श्रोष्यसी, श्रोष्यसी मैं अगर मेरी बात नहीं सुनोगे, अहंकार के ऊपर काम करोगे तो विनक्षसी, तो नाश हो जाओ। इसकी भावार्थ में मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूं, प्रभुपाद ने भावार्थ लिखी है, इस दो लाइनों को सुनिए, फॉर वन हु एक्ट्स इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, जो भी कृष्ण भावना में कार्य करता है, लॉर्ड कृष्णा बिकम द मोस्ट इंटीमेट फ्रेंड, भगवान श्री कृष्ण उसका बहुत अंतरंग मित्र बन जाता है, ही ऑलवेज लुक आफ्टर हिज फ्रेंड्स कंफर्ट, और भगवान श्री कृष्ण अपने ऐसे सखा के हर सुख का बहुत बारीकी से ध्यान रखेंगे, एंड ही गिव्स हिमसेल्फ टू हिज फ्रेंड, और भगवान अपने आप को उस अपने मित्र के हवाले कर देते हैं। कौन सा वाला भक्त, हु इज मन दैट फ्रेंड, वो जो मित्र है, सो डिवोटेडली एंगेज इन वर्किंग 24 hours a day टू प्लीज लॉर्ड, जो ऐसे 24 घंटे भगवान की प्रसन्नता के लिए काम में लगा हुआ है, भगवान उसका ऐसा मित्र बनेगा, उसके सारी सुख सुविधाओं की सारा व्यवस्था करता है, और भगवान ऐसा मित्र है कि वो उसके हवाले कर देता है। अब अर्जुन के सामने खड़ा है, इसलिए प्रभुपाद ने यहां जो भावार्थ लिखी है कि अर्जुन के आगे कृष्ण खड़ा है, अर्जुन को ऊपर बिठाया है, कृष्ण नीचे बैठे हैं और आगे खड़े हैं, युद्ध में आगे खड़े होने का मतलब है तुम्हारी रक्षा करता है, और उस मेरे ऊपर स्थान दिया है, ये सामने प्रभुपाद के दृश्य आया है, तब ये शब्द लिखे हैं प्रभुपाद ने, ये दृश्य प्रभुपाद के सामने है कि अपने भक्त के, अपने मित्र के सारे सुख का बड़ी सावधानी से भगवान ध्यान रखते हैं। कितना अपने भक्त के सुख का ध्यान रखते हैं, अर्जुन के ऊपर तीर करण का जाके इस गले के ऊपर निशाना था, घोड़ों को इतना नीचे भगवान ने झुका दिया के अर्जुन का मुकुट तो उड़ गया लेकिन सर नहीं उड़ा। तो भगवान अपने भक्त के सुरक्षा की बहुत ज्यादा सावधानी से ध्यान रखते हैं, किसका, जो भगवान के शरणागत होके सारा काम भगवान के आदेश से करता है, भगवान को सुख पहुंचाने के लिए काम करता है, उसके लिए बहुत बड़ी, ये भावार्थ के शब्द हिंदी में कैसे लिखे हैं इसको पढ़ के देखिए, भक्त के लिए बहुत बड़ा आश्वासन। हाँ,
जो व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत में कर्म करता है, भगवान कृष्ण उसके घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं, वे सदैव अपने मित्र की सुविधा का ध्यान रखते हैं, और जो मित्र 24 घंटे उन्हें प्रसन्न करने के लिए निष्ठा पूर्वक कार्य में लगा रहता है, वे उसको आत्मदान कर देते हैं, अतः किसी को देह आत्मबुद्धि के मिथ्या अहंकार में नहीं बह जाना चाहिए, झूठे ही यह नहीं सोचना चाहिए कि वह प्रकृति के नियमों से स्वतंत्र है या कर्म करने के लिए मुक्त है, वह पहले से कठोर भौतिक नियमों के अधीन है, लेकिन जैसे ही वह कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करता है वह भौतिक दुश्चिंताओं से मुक्त हो जाता है। मनुष्य को यह भली भांति जान लेना चाहिए कि जो कृष्ण भावना अमृत में सक्रिय नहीं है, वह जन्म मृत्यु रूपी सागर के भंवर में पड़कर अपना विनाश कर रहा है। कोई भी बद्ध जीव यह सही नहीं जानता, यह सही सही नहीं जानता कि क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होकर कर्म अंतर से करता है, वह कर्म के लिए मुक्त है, क्योंकि प्रत्येक किया हुआ कर्म कृष्ण द्वारा प्रेरित तथा गुरु द्वारा पुष्ट होता है।
तो इस श्लोक के ऊपर बहुत गंभीरता से सोचिए कि भगवान अपने भक्त के सारे कार्यों के अंदर जो बाधाएं हैं उसको दूर करते हैं, जो बाधा है उसको दूर करते हैं। महाभारत में अर्जुन के सामने बड़ी बाधा थी, भीष्म पिता मैं तो मरने वाला नहीं था, किसी के मारने से नहीं मरना था उसको, तो इच्छा मृत्यु का वरदान था उसको। वो बाधा भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से युधिष्ठिर पूछ के आया कि बाबा विजयी तो कैसे मैं विजयी होऊंगा, आपके जीते हुए तो विजय होगी नहीं, इसका अर्थ ये हुआ। तो मुस्कुराते हुए भीष्म पिता में कहने लगे, ये तुम्हारा प्रश्न नहीं है, मैं स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाता हूं। ये दूसरे को तो समझ में नहीं आया, बाकी कृष्ण को बोला, वो तो कहता है स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाता कोई, अभी कोई कुंती को क्या द्रौपदी को थोड़ी साथ ले जाके लड़ाई करेंगे। कृष्ण बोला, ये बात नहीं आप समझे नहीं हो, ये अपनी सेना में जो ये द्रौपदी पुत्र है ना शिखंडी, इसको वो जानता है ये स्त्री है, तो उसी का बदला लेने के लिए आया है। ये शिखंडी जो पहले जन्म में भीष्म पिता में से शादी करना चाह रही थी, नहीं शादी की थी
वो, किन्नर थे कि स्त्री,
वो तो बाद में स्त्री, पहले स्त्री थी, दूसरे जन्म में ये हुआ। तो पहले जन्म में तो ये महाराज काशी के महाराज की दो बेटियां थी, तो वो अपना गुरु परशुराम आया, परशुराम ने आके कहा भीष्म पितामह को शादी करो, उसको उसकी बात नहीं मानी अपने अपने। तो भगवान ने उस बाधा को दूर करने के लिए भीष्म को कहां से हटाए, बड़ी बाधा है ना अर्जुन के लिए, नहीं तो विजय तो नहीं हो सकती। भीष्म को हटाने के लिए वो आगे शिखंडी को खड़ा करके अर्जुन के द्वारा भीष्म पिता मैंने अपनी इच्छा का मृत्यु स्वीकार किया कृष्ण के इच्छा अनुसार। अब दूसरी बड़ी बाधा, द्रोणाचार्य मरने वाला नहीं, उसके जीते जी नहीं विजय कर सकते, पांडव नहीं विजय भाई विजयी हो सकते हैं, उसको कैसे उसको कैसे हटाया जाए, कोई तरीका नहीं। फिर इधर उधर देख के भीम को बोला, वो हाथी कौन सा देख रहे, बोला इसका नाम क्या, अश्वत्थामा, बोला मारो, बाधाएं है भाई। अपने भक्त जिसने पूरा शरण ले लिया है, अर्जुन ने तो उस दिन पहले भगवान का शरण लिया जिस दिन द्वारका में दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान के पास सहायता के लिए पहुंचे थे। दुर्योधन ने तो सेना को स्वीकार किया, लेकिन अर्जुन ने भगवान अकेले नेते को ले लिया, वही अर्जुन का पहला शरणागति है कि उसने अकेले भगवान श्री कृष्ण को बगैर किसी युद्ध के अस्त्र शस्त्र के ऐसे ही सारथी के रूप में स्वीकार कर लिया। तो ये बहुत बड़ी शरणागति अर्जुन की पहली है। तो भगवान ने उसकी हर रुकावट को हटाने का सारा जमा अपने ऊपर ले लिया, सारी जमा अपने ऊपर ले ली। कई वर्तक केशव, ऐसे ऐसे परीक्षित महाराज श्रीमद् भागवत में कहेंगे कि भीष्म द्रोण जयद्रथ और अश्वस्थामा कर्ण ये कोई साधारण योद्धे नहीं थे, और ये किसी हमारे योद्धाओं के द्वारा हारा जाए ऐसा संभव नहीं था। ये तो केवल भगवान कृष्ण की कृपा से ही हमारे पितामह अर्जुन आदि विजयी हुए, कई वर्तक केशव, ये केशव की कृपा से सब हुआ। तो वो भगवान कह रहे हैं सर्व दुर्गाणी मई प्रसादा तरश्यसी, सारे तुम्हारे दुर्गम जो मुश्किल आते हैं उनसे मेरी कृपा से तुम पार हो जाओगे। तो भगवत कृपा बहुत बड़ी, भगवान कृपा करने को तैयार है कोई भगवान का भक्त बनने को तैयार हो तो। एक भागवत के भावार्थ प्रभुपाद ने दसम स्कंद में लिखा है, लिखते हैं हजारों ऐसे भक्त हमारे हैं जो पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं, उनके लिए कोई भी स्थाई काम नहीं है, कारोबार धंधा नहीं है, लेकिन सारे ही बहुत अपुलेंटली मेंटेन है। एक भावार्थ में ये बहुत बड़ा सुंदर शब्द लिखे हुए दूसरे अध्याय में, दसम स्कंद के दूसरे अध्याय की एक भावात्मक में प्रभुपाद लिखा है, हजारों ऐसे भक्त जो पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लगे हैं, कोई स्थायी कारोबार नहीं, काम नहीं, लेकिन सबके सब भगवान की कृपा से बहुत ही सुरक्षित भगवान की तरफ से जीविका बहुत सुंदर भगवान की भक्ति से बिता रहे हैं। कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं, भगवान उनकी देखभाल कर रहा है, उनके लिए हर चीज की व्यवस्था कर रहा है। कहीं नहीं जा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं मांगने की जरूरत नहीं, अपने आप सब कुछ व्यवस्था भगवान कर रहा है। तो ये कोई ऐसे नहीं कि अर्जुन की भगवान ने व्यवस्था की और हमारी नहीं कर रहे हैं। अभी भी हजारों लोगों की भगवान आज भी व्यवस्था कर रहे हैं, आज भी ये व्यवस्था उतनी ही सरलता से सबके लिए सुलभ है। केवल संकल्प ये निश्चित होना चाहिए कि हम हर समय भगवान के ऊपर आश्रित रहेंगे, हर समय भगवान हमारी स्मृति में रहेंगे, मद चित्त, तेरा चित्त मुझ में लगा रहे। ये भक्त के लक्षण लक्षण है, दसम अध्याय में ये आता है, मद चित्त मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम। भक्त कौन सा? जिसका चित्त मुझ में लगा हुआ है, अथवा जिसके हृदय में सदा मैं विराजमान रहता हूं, उसके लिए कभी कोई संकट आने वाला नहीं। अगर भगवान को चित्त में नहीं रखेंगे तो कौन चित्त में आएगा? हमारा अहंकार, तो मैं चित्त में आऊंगा। तो अहंकार उपाश्रित, तुम अगर अहंकार का आश्रय लोगे, मेरा आश्रय नहीं लोगे, तो फिर दूसरा आपके लिए ऑप्शन है, आप अपने अहंकार का आश्रय। अहंकार मतलब मैं बड़ा हूं, लेकिन भगवान सबसे बड़ा है, उसको स्वीकार करने से हम अपने आप छोटे हो जाते हैं, तो फिर हमारा अहंकार अपने आप समाप्त हो जाता है। पुराने जमाने में कोई टीचर कहा करता था बोर्ड के ऊपर, एक लाइन मैंने निकाली है, इसको मिटाओ मत, इसको छोटी बना के दिखाओ। तो दूसरा बुद्धिमान लड़का जाके दूसरी लंबी लाइन उसके पास में खींच ली, तो अपने आप वो छोटी नजर आ गई। तो अपने साथ में कोई बड़े को खड़ा कर दोगे तो अपने आप छोटे हो जाओगे। कहीं कोई भक्त ने हमें पूछा, घर में मंदिर को रखने की क्या जरूरत है ठाकुर जी को? मैंने बोला, घर में पुराने जमाने में दादा बाबा को, बाबा दादा को ही दादा दादी होते थे ना, उसकी क्या जरूरत होती थी? बुजुर्ग घर में होता है ना, उठना बैठना बहुत बड़ा नेम से होता है, बोल चाल में बहुत बड़ा अंतर होता है। बड़ा घर, पिताजी घर में है तो बेटा बच्चा कैसे बोलता है, सब चीज मर्यादा में रहती है ना। तो भगवान को घर में रखने का मतलब सबसे बड़ा जो है उसको हमने घर में विराजमान कर दिया है, तो हर चीज मर्यादित होगी। और जब कहीं जाएंगे तो भगवान से आदेश लेते हैं, अब हम जा रहे हैं आपकी सेवा करने के लिए, सुबह शाम को आएंगे हम, आपका काम करके वापस आ गए, तो अब आपके ऊपर भार नहीं है, भगवान घर का मालिक बन के बैठा हुआ है, तो आपकी सारी चिंताएं दूर हो गई। तो भगवान को घर में बिठाने का मतलब है अपनी सारे जो 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 दुर्गाणी है वो सब अपने रुकावटों को जान छुड़ाने के लिए भगवान के हवाले कर दो, अपने आप वो सहारा बन जाएगा। कितनी मुश्किल होती है घर चलाने में, बहुत बड़ी परेशानी होती है। कितने घर में सदस्य आपके हैं, आपके घर में परेशानी, 5, 4, 8 कितने? आज तो हम दो, हमारे 2, 4, पांचवा नौकर होता है, 5 बस यही है, इससे ज्यादा है कुछ? वो मंदिर के अंदर 200 भक्त रहते हैं और सबके लिए सुबह कुछ नहीं करना पड़ता है और 9 बजे प्रसाद तैयार मिलता है, और प्रसाद में भी चावल भी होता है, दाल भी होती है, 2 सब्जी भी होती है, रोटी भी होती है, और कोई और भी चीज भगवान के महाप्रसाद से मिठाई आती है। कितने घरों में 2 सब्जी रोज बनती है? बहुत कम बनती है। हम तो घूम, पूरी दुनिया में घूम के देख रहे हैं ना कि जितना ऑप्यूलेंटली जो है प्रसाद वहाँ बनता है मंदिर में, और 200 भक्तों के लिए बनता है, और कोई चिंता नहीं है। भक्त को यह भी मालूम नहीं है कि आलू का भाव क्या है बाजार में, और सुबह रोज मिलता है उसको, और कोई फीस्ट में तो उनको पनीर सब्जी दिखती है, रात को सोते हैं तब से दिखती है उनको, वो भी आती है। कहने का भाव ये है कि इतने बड़ा परिवार भगवान के घर में रहता है, सारे की चिंता करके भगवान पूरा कर रहे हैं कि नहीं, कमाने के लिए खुद बैठा है पेटी रख के आगे, ये जो भिखारी के जैसा पैके, भिखारी ऐसे पेटी रखता है, ये भक्त जो आते हैं उनके लिए भगवान ने पेटी रखी है, भगवान को क्या करना है, ये पेटी रख के बैठा हुआ है आगे। वो कहते हैं भगवान को जब नींद आती है तो श्रीरंगम में जाके सो जाते हैं, श्रीरंगम में, दक्षिण भारत में जहां भी जाए ना भगवान सोए हुए मिलेंगे। जब नींद आती है तो श्रीरंगम में जाके सो जाते हैं रंगनाथ के रूप में। जब खेलने कूदने का मन करता है तो वृंदावन में आते हैं, बहुत खेलते हैं कूदते हैं, और भूख लगती है तब जगन्नाथपुरी में जाते हैं, 56 भोग वहां लगते हैं। हाँ, इतना माल मिल पकता है भगवान के लिए, बड़ा किचन के अंदर इतने बड़े बड़े बर्तन होते हैं, भूख लगती है तो जगन्नाथपुरी जाते हैं, और फिर धन कमाना होता है ना तो तिरुपति में जाके खड़े हो जाते हैं, पैसा लाओ, पैसा वहाँ इकट्ठा करते हैं। ये है भगवान का, चार काम इस तरीके से करते रहते हैं। तो ये पैसा भगवान, और मेरे ख्याल में जितना भक्त लाते हैं हमारा बाहर घूम से, उससे ज़्यादा हमारी हुंडी से हमेशा निकलता है, ये भगवान की हुंडी से उससे ज़्यादा पैसा निकलता है। और ये पैसा हुंडी वाला जो है ना, ये टैक्स से एग्जेम्प्ट है, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं, इसमें इसके अंदर से 1 करोड़ रुपया निकले तब भी आज़ाद है, कोई इसको हाथ नहीं लगा सकता, ये भगवान का पैसा है, ये भगवान का पैसा है। तो भगवान आपकी सारी, आप कमाई करने बाहर जाते कहीं नहीं जाते, यहीं खड़े खड़े पैसे मंगा लेते और अपने भक्तों का देखभाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, देख रहे हैं तो मंत्र चल रहे हैं ना। और हम कहते हैं भक्त कहीं बाहर मत जाओ, आपके घर में कोई मेहमान आता है आप जाओ, पूछे कब जाओगे, और हम कहते हैं मत जाओ, ये उल्टी विधि चल रही है, मंदिर से हम कहते हैं कोई मत जाओ, बैठे रहो यहाँ। एक बार प्रभुपाद ने बॉम्बे में कहा, बहुत अच्छे लोग आया करते थे, बोला आप सब मंदिर में रह जाओ, हम आपका सब देखभाल करेंगे, भोजन प्रसाद रहना सब आपका यहाँ, हम देखभाल करेंगे, आप सब यहाँ रह जाइए। लेकिन कोई नहीं रहा, लेकिन कहने का उनका उदारता ये थी कि हम सबका भगवान सबकी व्यवस्था करने को तैयार है। तो केवल भगवान के ऊपर विश्वास होना चाहिए। शरणागति के 6 लक्षण, इसके आगे वाले में एक श्लोक में लिखा है शरणागति के 6 लक्षण, उस 6 लक्षण में एक लक्षण है पूर्ण रूप से विश्वास होना चाहिए कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे, पूर्ण रूप से ये विश्वास होना चाहिए कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे। ये श्लोक में रक्षति इति विश्वासो, ये विश्वास होना चाहिए कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे, इसमें एक पैसे का भी संदेह नहीं होना चाहिए। इसके बाद भगवान कहते हैं अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे, अपनी बाधाओं को दूर करने की तेरी इच्छा अगर नहीं है तो तू क्या करोगे, अपने अहंकार से काम करोगे। तब भगवान को भगवान कहते यद अहंकाराम आश्रित्य, पढ़िए 59, यद अहंकाराम आश्रित्य न योतस्य इति मन्यसे मिथ्येश विवसायस्ते प्रकृतिस्त्वाम न्योक्षसी। अगर अहंकार का आश्रय ले लिया और अगर युद्ध करना नहीं माना तुमने, तुम ये कहोगे कि मेरा मन नहीं मानता है युद्ध करने को, तो ये तेरा मन नहीं मानता है, तुम ये झूठ मिथ्या, ये मिथ्या व्यवसाय, ये झूठी बात है, झूठा कारोबार है, ये तुम झूठा झूठ कह रहे हो, ये तुम्हारी बात सत्य नहीं है। क्यों क्यों सत्य नहीं है? तो भगवान कहते हैं तुम्हारा स्वभाव जो है ना, तुम्हारा स्वभाव क्षत्रिय का, ये तुमसे जबरदस्ती लड़ाई कराएगा। अभी तुम, मैं कह रहा हूं लड़ाई करो, तुम नहीं कर रहे हो, लेकिन तुम क्षत्रिय हो, तुम यहां से उठ के वहां जाओगे, फिर तुम धनुष उठाओगे, फिर लड़ाई करोगे, क्योंकि ये तेरे स्वभाव में, तो स्वभाव से तो रह नहीं सकता, ये तुम्हारा प्रकृति है, ये तुम्हारा स्वभाव है, ये तुम इस स्वभाव से नहीं रह सकते। तुम युद्ध तो करोगे ही, लेकिन उस वक्त करोगे तो तुम जिम्मेवार हो, अब करोगे तो मैं जिम्मेवार हूं, अब मेरे आदेश से कर रहे हो तो मैं जिम्मेवारी ले रहा हूं, फिर तुम अपने अहंकार से करोगे तो तुम जिम्मेवार। तो मानो अर्जुन भगवान को ऐसे देखता रहे, तुम्हें क्या पता मैं युद्ध करूंगा, मैं तो कह रहा हूं मैं संन्यास लेके चला जाऊंगा, तुम्हें कैसे पता लगा? तब भगवान कहते ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, मैं परमात्मा के रूप में सबके हृदय में, मुझे मालूम है तुम क्या करोगे। कोई कहे ना भाई तुम क्या करोगे, मैं कहता हूं तुम्हें क्या पता मैं करूंगा, मैं अंदर बैठा हूं तुम्हारे, मुझे मालूम है तुम क्या करोगे, क्योंकि कई जन्मों से मैं तुम्हें जानता हूं, तुम्हारी प्रकृति को जानता हूं, मैं ही परमात्मा के रूप में तुम्हारे पुराने कर्मों के अनुसार तुम्हें क्या करना है उसकी अनुमति मैं देता हूं, और तुम्हें शरीर भी ऐसा ही देता हूं जिससे तुमसे यही होगा। प्रभुपाद उदाहरण देंगे इसमें कि ड्राइवर तो वही है, अगर 1950 की पुरानी फियाट में बैठा हुआ तो 30 की स्पीड में जाएगा, लेकिन वही ड्राइवर आप उसको हुंडा सिटी में बैठाओगे तो 90 की स्पीड में जाएगा, तो जैसी उसको गाड़ी देगी वैसी चलाएगा, चलाने वाला तो वही है। तो ऐसे भगवान शरीर ही ऐसा देगा, अगर तुम्हारे से लड़ाई नहीं करानी होती तो बड़ा जटाधारी ब्राह्मण बनाता कहीं बैठा हुआ, तुम जो राम राम जपा होता, तुम्हें बनाया ऐसे भुजाओं वाला महाभुजा वाला क्षत्रिय, तो तुमसे युद्ध ही कराना है क्योंकि तुम्हारी इच्छा ही, मैं जानता हूं तुम्हारी इच्छाओं के अनुसार मैं सारा शरीर भी मैं ऐसे देता हूं जिनसे तुम्हारी इच्छा पूरी करो। तो परमात्मा के रूप में मैं बैठा ही इसलिए हूं अंदर कि कई जन्मों से तेरी इच्छा है उनके अनुसार तुम्हारे को शरीर देता हूं और तुम क्या करोगे ये मुझे मालूम है, क्योंकि मैं ही तो अनुमति देता हूं तब तुम करते हो, नहीं तो तुम कहां से करोगे। तो अर्जुन मानो पूछता है एकदम कि कैसे आपको मालूम, बोला मुझे मालूम कैसे नहीं भाई, तो मुझे मालूम है मैं अंदर बैठा हूं तुम्हारे हृदय में। इससे बीच में एक और श्लोक आएगा, स्वभाव जेन कौन्तेय निबद्ध स्वयं कर्मणा कर्तुम नैच्छसि यन मोहात् करिष्यसि अवशो अपीता। स्वभाव जैन कौन्तेय, जैन का मतलब जन्म, स्वभाव से जिसने जन्म लिया है ना अर्जुन, स्वभाव से जन्म लेने वाली चीज वो तुम्हारे को पकड़ के काम कराएगी। तुम चाहो भी कि मैं नहीं करता हूं तो भी अवश्य मतलब तुम्हारे बस नहीं चलेगा, वो तेरे को बेबस करके भी तुमसे ये काम कराएगा। इसको बोलते हैं स्वभाव। वैसे स्वभाव बहुत अच्छा शब्द है, दूसरा शब्द एक होता है हैबिट। हैबिट जो है उस बहुत हैबिट आस्ते आस्ते कोई काम करते 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 उसकी आदत हो जाती है। तो स्वभाव और आदत में थोड़ा अंतर है, आदत बुरी होती है तो उसको आदत कहते हैं और अच्छी होती है तो उसको स्वभाव कहते हैं। तो कभी हैबिट के लिए अंग्रेजी में कहते हैं हैबिट, ऐसा शब्द है उसमें से एच निकालो तो भी बिट रहेगा, बी निकालो तो भी इट रहेगा, तो ये जाने वाला नहीं है, ये हैबिट जाने वाली नहीं है, एक बार हो गई तो निकलने वाली नहीं है, नहीं जाने वाली चीज है हैबिट। और हैबिट बनती कैसे है, विचार करो, विचार से वो काम होता है। ब्रेड थाट से एक्शन, एक्शन से हैबिट और हैबिट से कल्चर, तो ऐसे हैबिट बनती इस तरीके। तो कई जन्मों से वर्ण के हिसाब से क्षत्रिय वर्ण बना हुआ है, तो तेरा स्वभाव तुमसे ये कर्म निश्चित कराएगा और तुम नहीं चाहोगे तब भी जबरदस्ती तुमसे ये कर्म करना तुमको पड़ेगा, तुम इसको रोक नहीं सकते हो। ये भगवान के कहने का भाव ये है कि हर एक आदमी अपने अपने स्वभाव से अपने कर्म को करने में करने के लिए बाध्य है, उससे बच नहीं सकता है। इसलिए गुरुजनों का काम ये होता है कि शिष्य का वर्ण देखते हैं, कौन से वर्ण का है इससे कौन सा काम लेना चाहिए। ब्राह्मण का काम करते हुए भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, क्षत्रिय का काम करते हुए भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, वैश्य का काम करते हुए भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, और तुच्छ से तुच्छ काम करते हुए भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो स्वभाव से काम होगा उससे आप ठीक भगवान को प्राप्ति कर सकते हैं। तो स्वभाव के विपरीत काम करने से काम होगा नहीं। तो अर्जुन का स्वभाव लड़ने का है तो भगवान उनसे युद्ध करा रहे हैं। अब सुधामा का ब्राह्मण का स्वभाव था तो उसके भगवान ने कभी नहीं कहा कि तुम युद्ध करो, कहा तुम भजन करो बैठ के, और अर्जुन को कभी नहीं कहा कि तुम भजन करो, उसको कह रहा है तुम युद्ध करो। तो जिसका जो स्वभाव है उससे वो काम लेना चाहिए, उसी काम को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, उसके विपरीत काम करने से वो नहीं कर पाएगा। और इस वक्त सबसे बड़ी इस देश की जो दुर्दशा है उसका कारण यह है कि जो जिसके योग्य नहीं है उसके ऊपर वो गधे की तरह काम लादा जा रहा है, वो काम कर ही नहीं सकता है क्योंकि उसकी उसके अंदर वो स्वभाव में है ही नहीं, और इसलिए सब गुड़ गोबर हो गया, कुछ काम का नहीं काम हो रहा है, क्योंकि जो योग्य है जिस काम के लिए उसको काम नहीं दिया जा रहा है। व्यवस्था है, ये तो भगवान की व्यवस्था है, आप उसको बदलने का प्रयास करोगे तो आप टूट जाओगे, वो नहीं टूटेगा, ये नियम नहीं टूटने वाले। इसलिए कहते हैं जीवन जो है नियमों के ऊपर आधारित होना चाहिए, प्रिंसिपल के ऊपर, उसूलों के ऊपर जीवन आधारित। ये 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 उसूल है, ये नियम है, ये प्रकृति के नियम है, इनको बदलने का प्रयास करोगे ये नहीं बदलेंगे, तुमको टूटना पड़ेगा। तो ये हम बदलने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए न सिर्फ इस देश में लेकिन पूरे विश्व के अंदर। प्रभुपाद जब यहाँ से प्रचार करने गए तो तब जाके यही बोला कि मैं ब्राह्मण बनाने के लिए आया हूँ, आइए ब्राह्मण बनिए। मूल विश्व का कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं है, सारा ही विश्व बगैर ब्रेन के चल रहा है। ब्राह्मण ब्रेन ब्रेन होता है, तो ब्रेन होगा तब बुद्धि से काम होगा, बुद्धि सब भ्रष्ट हो गई। तो ब्राह्मण बनाने के लिए मैं आया हूं, आइए आइए ब्राह्मण बनिए। और ये ब्राह्मण बनने का मतलब है जो दूसरों का मार्गदर्शन करे, दूसरों को शिक्षा दे, दूसरों को सही रास्ते के ऊपर चलाए। तो ये वर्ण दुनिया से लुप्त होता जा रहा है, बहुत बड़ा अभाव है इस वर्ण का। बहुत मुश्किल से ऐसे स्वभाव वाले लोग मिलते हैं जो अपने आप को दूसरों की सेवा के लिए अर्पण करने को तैयार हैं और उनको कुछ नहीं चाहिए। ब्राह्मण उसको बोलते हैं जो कुछ नहीं लेता है पढ़ाने का, शिक्षा का कुछ लेगा नहीं, सेवा है, ये उसका स्वभाव है। हमें मालूम है, हम ऐसे लोग बहुत जानते हैं, उसको सुबह से शाम तक 10 बार बोलो सत्संग करो, 10 बार क्लास देगा, उनका स्वभाव है। लेकिन उसको कहो कि तुम बाहर जाके स्टॉल के ऊपर 2 किताब बेचो, नहीं बेच पाएगा, खड़ा करके देखो नहीं बेच पाएगा, उसका स्वभाव ही है। तो जिसका जो स्वभाव है उससे उसी का वही काम लेना चाहिए। स्वभाव जे न कौनते, जो स्वभाव से जन्म लिया है जिस चीज ने, अथवा जन्म से जो स्वभाव उसका है, या स्वभाव जे न मतलब स्वभाव से उत्पन्न होने वाला कार्य, जैसे क्षत्रिय का स्वभाव से लड़ाई करने का कार्य है। युद्ध और जुआ द्युत, ये दोनों क्षत्रिय के लिए ऐसे कार्य हैं जो कोई उनको ललकारेगा तो वो उसको करना ही पड़ेगा, वो ना नहीं कर सकता। और दोनों में हार और जीत होती है, और दोनों समान है, और दोनों में आदमी लुट भी जाते हैं और मर भी जाते हैं और खप भी जाते हैं, और दोनों बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं, दोनों में बहुत बड़ी हानि होती है, दोनों में हानि होती है। और ये दोनों क्षत्रिय के स्वभाव के अंदर अंतर्गत आते हैं, ये क्षत्रिय के स्वभाव के अंतर्गत आते हैं, इससे क्षत्रिय बच नहीं सकता, उसका स्वभाव है। तो भगवान कहते हैं तुम्हारा स्वभाव तुमसे ये कराएगा, और जब तुम्हारा स्वभाव तुमसे कराएगा तो तुम नहीं चाहते हुए भी जबरदस्ती तुमको करना पड़ेगा। हमने कहा था अभी कभी कभी स्वभाव की बात होती है, वो भूलती नहीं है। 1-2 बार हमने कभी ये बात आपको बताई होगी, कोई सुनारे का काम करने वाला साधु बन गया, साधु बन गया तो भिक्षा की रोटी कहीं लेने गया, रोटी हाथ में आ गई तो ऐसे देखता है 25-30 ग्राम से बड़ी तो नहीं हो सकती, आटा कुछ मिक्स है इसमें, केवल ना ये गेहूं नहीं लग रहा, कुछ गंदम गेहूं नहीं है इसमें, कुछ आटा मिक्स किया हुआ है, क्योंकि उसके दिमाग में तौल और कितना मिलावट है उसको यही पता था। तो भले वो साधु बन गया लेकिन उसका जो बात करने का तरीका वही रहेगा, कोई भी काम करेगा उसमें। और वो चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए, ये कहावत है। चोर साधुओं के संग में गया, रोज सुनता है चोरी नहीं करनी चाहिए, रात को उसको चोरी करने की आदत है, क्या करे, रात को उठ के अब साधुओं के बीच में चोरी कैसे करूं, एक साधु का लोटा उठाया, दूसरे साधु के झोले में डाला, उस दूसरे के धोती उठा के तीसरे की धोती में डाली, सुबह सब बोले मेरा कहाँ गया, मेरा कहाँ गया, मेरा कहाँ गया, सब परेशान झगड़ा कर रहे हैं आपस में। ये साधु बड़े माफ करना बोल रहा है, माफ करना मेरे को, मैं चोर हूं। अब आप कहते हैं चोरी मत करो, तो मैं लेके कहीं नहीं गया, तुम्हारा लोटा उसमें पड़ा है, उसका धोती उसमें पड़ा है। चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से नहीं जाए, इधर से उधर रख देता हूं, मैं नहीं ले रहा हूं, आपने कहा मना किया, लेकिन मैं रात को नहीं सो सकता हूं, मेरी आदत है, क्या करूं, कुछ उठाना है, उठा के कहीं छुपाना है, तो इधर से उठा के उधर छुपा दिया, उसका उठा के उधर छुपा दिया, मैं इस काम से नहीं रह सकता हूं, क्योंकि ये मेरे स्वभाव के अंदर। तो कई लोग हैं उनका स्वभाव, आप कितना भी करो, सब्जी लेने जाएंगे तो एक बैंगन उठाना है तो उठाएंगे ही, देखे या न देखे कोई, वो एक तो उठा ही लेंगे, देखते। पहली जगन्नाथ रथ यात्रा अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में निकली कैसे, कोई भक्त प्रचार करने गया किसी दुकान के अंदर, ऐसी जगन्नाथ की मूर्ति देखी ना एक, उसको उठा के छुपा के ले आया, आदत जो पड़ी हुई थी उठाने की, लाया चुरा के लाए, सुना के लाई प्रभुपाद, वो प्रभुपाद ने देखा भगवान जगन्नाथ आ गए, प्रभुपाद बड़े प्रसन्न हुए, भगवान अपने आप, उन्होंने तो भगवान देखा आ गए, लेकिन वो ऐसे उठा के उसको बोले इसके साथ दो और होंगी, बोला हाँ थी, बोला वो ले आओ, फिर दोबारा उस दुकान पे गई, ऐसे घूमते हुए दो और लेके आ गई। तो जिसका जिसका ये आदत होगी ना उससे वो रह नहीं सकता। बहुत मेहनत करने से समझदारी आ जाए ना तो 10 बार रोकोगे तो भी 11वीं बार दोबारा हो ही जाएगा। एक बार पहले मानो रोज होता था तो 10 दिन में एक बार फिर हो जाए। इसके लिए बहुत बड़ी कड़ी तपस्या करनी होती है कि पुरानी आदतें दोबारा ना पड़ जाए, पुरानी आदतें दोबारा ना पड़ जाए, इसलिए बहुत बड़ी तपस्या करनी पड़ती है। प्रभुपाद इसलिए कहते हैं ऐसा विश्वास 3 प्रकार का होता है। कच्चे विश्वास वाले बहुत भक्त आते हैं, थोड़े दिन रहते हैं, कुछ सुख सुविधा मिल गई, सब ठीक हो गया, तो न शास्त्र के ऊपर विश्वास था, न उसको पढ़ा था, न ही कोई भक्ति में विश्वास था, तो वापस चले जाते हैं, फिर वो पक्के रह नहीं पाते हैं। या एक ऐसे विश्वास वाले होते हैं जो शास्त्र का तो पता नहीं होता है बेचारों को, लेकिन विश्वास अच्छा खासा होता है, वो डगमगाते नहीं है, जाते हैं फिर वापस आते हैं, फिर जाते हैं आते हैं, लेकिन फिर भी मंदिर में पड़े रहते हैं। लेकिन एक बहुत उच्च विश्वास वाले होते हैं जिनको शास्त्र का भी ज्ञान होता है और उनकी श्रद्धा भी भगवान के ऊपर पूर्ण होती है, तो वो जरा प्रगति आगे जल्दी बढ़ सकते हैं। तो भक्तों में भी 3 प्रकार के ऐसे स्वभाव के अनुसार उनकी प्रवृत्तियां होती हैं। अब कहाँ प्रभुपाद जी अफ्रीका में भक्त प्रचार करने के लिए गए तो उन अफ्रीकी लोगों का काम ही चुराना था, और प्रभुपाद की धोती भी सुबह रात को सुखाई सुबह मिल नहीं रही, गई कहाँ, वो धोई भी उसने, वो उठाई भी उसने, क्योंकि आदत है उसकी, क्या करे, ले गया उठा के, जब तक तो उसको भाई प्रभुपाद की धोती नहीं मिल रही है उधर पड़ी है, क्या करो, मेरे रात को मेरे को मन में आता है तो मैं उठाना, मेरे चोरी करना है मेरे को। तो ये स्वभाव जो है बहुत जन्मों से बनता है, एक जन्म से नहीं बनता है, इसलिए स्वभाव को बदलना, टू चेंज हैबिट, बहुत बड़ा परिश्रम, बड़ी तपस्या है। अपने आदतों को बदलने के लिए बहुत बड़ी तपस्या करनी पड़ती है। पुराने जमाने में लोग, कुछ लोग हैं कभी कभी, कुछ बहुत दोस्त मित्र कहते थे तो सिगरेट पीना छोड़ देते थे, 15 दिन छोड़ दी, लेकिन कब कहीं दूसरे को पीते हुए देखा उसका धुआं आया तो उसके मन में फिर पीने की इच्छा होती थी और वो वापस उधर चला जाता है। इसलिए इस आदत को बदलने के लिए बहुत बड़ा संकल्प चाहिए, दृढ़ संकल्प चाहिए, बहुत बड़ा दृढ़ संकल्प चाहिए। लेकिन दृढ़ संकल्प कोई करके छोड़ने का प्रयास करे तो लाखों में एक होगा, लेकिन भगवान का आश्रय ले ले तो सब छोड़ सकते। ये बहुत बड़ा एक अंतर हम बताते हैं आपको। बहुत से लोगों ने प्रयास किया होगा नशा छोड़ने का, नहीं छोड़ पाते, लेकिन भगवान का शरण लेने से, भगवान का नाम जपना शुरू करने से, भगवान के भक्तों के संग में बैठने से, भगवान का प्रसाद खाने से, अपने आप ये बुरी चीजें आपको छोड़ के चली जाएंगी। ये बहुत बड़ा परिणाम पूरे, ये प्रमाण है पूरे विश्व के अंदर, ये प्रमाण है। वो लोग जो नशा करने वाले थे उन्होंने नशा छोड़ दिया केवल भगवान के शरण में आने से। तो जो आदतें नहीं बदल पाती हैं बहुत जोर लगाने से, वो भगवान के शरण में आने से वो बाधाएं अपने आप टल जाती हैं, पता भी नहीं लगता, पता भी नहीं लगता। लेकिन भगवान का नाम लेना शुरू करना चाहिए। जैसे आप भगवान का नाम जपना शुरू करोगे ऐसे ये सब बाधाएं आपको छोड़ के जाना शुरू करेंगी। आपका नाम जपने में रुचि बढ़ेगी, ये चीजें आपको छोड़ के चली जाएंगी। लेकिन दवाई खाना शुरू करना पड़ेगा तब बीमारी जाएगी। ये बीमारी है, ये बुरी आदतें बीमारी है, ये बीमारी है, ये तब जाएगी जब दवाई लेंगे, और भगवान का नाम औषधि है, ये दवाई है, तो दवाई लेना शुरू करेंगे तब जाएगी। कई लोग सुनते हैं लेकिन करते नहीं है, जब तक करेंगे नहीं तब तक लाभ नहीं होगा। मंदिर में आना बहुत अच्छा, सत्संग सुनना बहुत अच्छा, प्रसाद खाना बहुत अच्छा, लेकिन जब तक भगवान का नाम नहीं लेना शुरू करेंगे तब तक परिवर्तन हृदय में आने में देर लगेगी। और जो नाम जप रहे हैं जब तक सेवा में नहीं लगेंगे तब तक आगे प्रगति नहीं होगी। केवल नाम जपते रहें और सेवा भगवान की में नहीं लगे तो आगे बढ़ने में आसानी नहीं है। पहला नाम जपना शुरू करना चाहिए तो बाधाएं जाएंगी। और फिर सेवा करना शुरू करना चाहिए तो प्रेम आएगा। पहले बाधा जाएगी तब निष्ठा और आसक्ति और रुचि आएगी भगवान के नाम में। सेवा करेंगे तब आएगी, सुख सेवा में मिलता है। भगवान के नाम जपने का सुख है, तब जब भगवान की सेवा प्राप्त होती है तभी आनंद आता है, सेवा में आनंद। इसलिए लालायत रहना चाहिए कि भगवान की सेवा कब प्राप्त होगी, और हमेशा एक दूसरे से ज्यादा सेवा करने की भावना होनी चाहिए कि हम अधिक सेवा करें, इस ये जो सेवा कर रहा है इसका सहयोग करें ताकि ये और अच्छी सेवा कर सके। कंपटीशन नहीं, कोऑपरेशन से, एक दूसरे से विवाद नहीं करना है लेकिन एक दूसरे सहयोग करना है। जो अच्छा सेवा कर रहा है उसको मैं कैसे सहयोग कर सकता हूं। तो सेवा के द्वारा भगवान की कृपा प्राप्त की जाएगी। तो अपन यहां छोड़ते हैं इस श्लोक के ऊपर, इसके बाद भगवान कहेंगे कि मैं परमात्मा के रूप के सबके हृदय में बैठा हूं, और फिर कहेंगे कि परमात्मा का शरण ले ले, तो परमात्मा की प्राप्ति की बात करेंगे, लेकिन अर्जुन उसमें संतुष्ट नहीं होगा। तब भगवान कहेंगे, फिर दोबारा गुह्य तमाम ज्ञान बताएंगे, मेरा शरण ले लो, कृष्ण कहेंगे मेरा शरण ले लो, तब संतुष्ट हो गया अर्जुन, शरण लेगा। तो ब्रह्म, परमात्मा और भगवान तीनों का इस 18वें अध्याय में इन तीन श्लोकों में दर्शन है। 15वें अध्याय में भी तीनों का दर्शन है, लेकिन ये सिद्धांत के हिसाब से इसको देखना चाहिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। हाँ बोलो बोलो माँ। भगवान की सेवा करने के लिए जो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं उनका सहयोग करना चाहिए। ये भगवान की सेवा का रास्ता यही है। जो भगवान के भक्त, जैसे मानो भगवान का कोई माता पिता बन के सेवा करना चाहता है, तो जैसे यशोदा माता सेवा करती है, तो उसकी उसकी सेवा में उसको सहयोग करना पड़ेगा, तब भगवान के वात्सल्य भाव की प्राप्ति होगी। जो भगवान के उस भाव में सेवा में लगे हुए हैं उनका अनुकरण करना पड़ेगा, उनका अनुकरण, उनके पीछे खड़े होकर उनको सहयोग करना पड़ेगा, उनकी सेवा में लगना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे जो जो भक्त भगवान की सेवा में लगे हुए हैं उनको उनको सहयोग करने से भगवान की सेवा में हम आगे बढ़ेंगे। जिस सेवा भगवान जिसकी स्वीकार कर रहे हैं उसके साथ जुड़ जाने से भगवान की सेवा में लगने का यही एक तरीका है, जो सिद्धांत के अनुसार है कि जो भगवान की सेवा में लगा हुआ है उसके साथ जुड़ जाइए। जो जिस सेवा में लगा हुआ उस सेवा में उसके साथ जुड़ जाइए। घर में रहते हुए भी भगवान की सेवा में, अपने घर में भगवान की सेवा भी की जा सकती है, और जहाँ विराट रूप से भगवान की सेवा हो रही है, जैसे यहाँ आप इतने सारे भक्त आए हैं तो यह भगवान का मंदिर है, भक्त भगवान की सेवा होती है, भक्तों की सेवा होती है, तो जो सेवा यहाँ भगवान के द्वारा सब भक्तों की हो रही है उसमें सहयोग करना चाहिए आपस में मिलके, कि भगवान का ये कार्य कैसे, जो सेवा का कार्य सबका है ये चलता रहे, ऐसे ये प्रेरणा से आगे बढ़ते हुए और सेवा, आगे की सेवा मिलती रहेगी। तो कई सेवा है जिसमें से, मानो छोटी सेवा ये है कि सवेरे थोड़ा आकर यहाँ सब बिछा देना चाहिए कि सब आके यहाँ बैठेंगे कथा सुनेंगे, ये भी सेवा है। सवेरे आके कुछ लोग यहाँ सब्जी काटते हैं, प्रसाद बनाते हैं, सब आते हैं, प्रसाद सबको तैयार मिलता है, ये भी सेवा है। अब प्रसाद ऊपर बटेगा, कोई बांटेगा, ये भी सेवा है। तो हर एक सेवा में प्रयास करना चाहिए, जो पहले सेवा कर रहा है उसके साथ लग के उसको सहयोग करने का प्रयास करना चाहिए। तो ऐसे आस्ते आस्ते आप आगे बढ़ेंगे, आगे वाला और आगे बढ़ेगा, फिर आप भी आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे सेवा कहीं जहाँ भी मौका मिले वहाँ सेवा करना चाहिए। तन पवित्र सेवा लिए, शरीर पवित्र सेवा से होगा, मन पवित्र भगवान के नाम लेने से होगा। तो सेवा के लिए उत्साहित होना चाहिए, जैसी हो सके छोटी मोटी, लेकिन करने के लिए लालसा होनी चाहिए। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न? हाँ बोलो बा। तत्व से जानने का मतलब है तत्व को जानना, तत्व को जानने, तत्व का मतलब सार में जो मुझे जानता है, जो सार रूप इसेंस, इसेंस मतलब जो मुझे तत्व से जानता है। तत्व से जानने का मतलब है कि भगवान है कौन। लोग तो सबको भगवान मानते हैं, ये तत्व से तो नहीं जानना हुआ ना। आप कहीं भी मंदिर में जाओ हिंदुस्तान के, आपको जितना जिसको जिसका नाम आता है, और नहीं कोई नया नाम भी होगा तो वो भी वहां मिलेगा देव देवता, और सबको ही भगवान मानते हैं लोग। तो तत्व तो नहीं है, पता है कि तत्व क्या है, तो तत्व से तो नहीं जानते कि भगवान है ही कौन, तो किसकी पूजा कर रहे हैं मालूम नहीं है। तत्व से जानने का मतलब कि भगवान पहले है कौन, विष्णु तत्व क्या है, और विष्णु तत्व में कौन बताएगा कि भगवान है कौन, कहां से हमको मालूम हो। तो तत्व से भगवान को जानने का मतलब पिन पॉइंट करके उस जगह पे पहुंचना जो स्रोत है भगवान, जहां से भगवान शब्द शुरू हुआ है, अथवा जहां से आरंभ हो रही है सृष्टि, वहां तक पहुंचना चाहिए तत्व में। तो ये ब्रह्मा, इसका सिद्धांत हमको बताता है ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो ब्रह्मा जी तत्व को जानते हैं, उन्होंने ढूंढ के निकाला कि सर्व कारण कारण गोविंद है। तो ये तत्व हमको ब्रह्मा की अथॉरिटी के ऊपर मानना चाहिए, न कि अपने मन से किसी को भी भगवान मान लेना चाहिए। अपने लिए तत्व आसान है, कृष्ण भावना में प्रभुपाद की कृपा से सब मान सब जानते हैं कृष्ण परम भगवान है। लेकिन प्राय 99.99% लोग ये भी नहीं जानते हैं कि भगवान है कौन, नहीं जानते भगवान कौन है। वो दो चार कृष्ण के भजन गा लेंगे, एकदम घूम फिर के फिर वो खाटू श्याम जी बाबा के भजन गाना शुरू कर देंगे, और थोड़ी देर के बाद घूम फिर के कहीं और किसी और बाबा का भजन गाना शुरू कर देंगे, और सब बराबर समझेंगे। उसमें उनको अंतर नजर नहीं आएगा। तो तत्व से नहीं जानते कि भगवान है कौन। तो तत्व से जानने का मतलब ठीक भगवान कौन है इसकी जानकारी होनी चाहिए। प्रभुपाद कभी कहते हैं हमको मालूम है भगवान कौन है, हम उस भगवान कौन है जानते हैं, उसका माता कौन है जानते हैं, उनका पिता कौन जानते हैं, उनकी एड्रेस जानते हैं, कहाँ है, कौन से कपड़े पहनते हैं हम जानते हैं, क्या खाते हैं हम जानते हैं, उसके बारे में हम बहुत बारीकी जानते हैं कि वो क्या पसंद करते हैं, क्या चाहते हैं, हम उसके बारे में ठीक जानते हैं। ये तत्व से जानने का मतलब है कि जो भगवान के बारे में बारीकी से हर चीज को जानता हूं। लोगों को मालूम नहीं है भगवान कौन है, ये बहुत बड़ी विडंबना है संसार में। एवरीबडी इज गॉड, और हम भी भगवान, तुम भी भगवान, ऐसे भी कहते हैं, तो तत्व कहां से लाओगे। बहुत बड़ी समस्या है, इसलिए धर्म का प्रचार भी बहुत हो रहा है, मंदिर भी बहुत बन रहे हैं, लेकिन कोई आदमी तत्व से कुछ जान नहीं रहा है, इसलिए चरित्र में कहीं भी उत्थान नहीं आ रहा है देश में। कथाएं तो बहुत हो रही है, रोज हजारों लाखों लोग इकट्ठे हो रहे हैं, भंडारे हो रहे हैं, हाँ, लेकिन लोगों के चरित्र में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, अच्छाई नजर नहीं आ रही है। बात चारों ओर से कलयुग के प्रभाव में कोई कमी नहीं दिखाई रही है, इसका अर्थ ये तत्व से भगवान कौन है ये नहीं जानते। जी राजा को प्रजा चुनती है, तो यथा प्रजा तथा राजा, जैसे प्रजा होगी वैसे राजा होगा। कौन चुनता है राजा को, आप लोग चुनते हो ना। सही आदमी को चुनने के लिए सही दिमाग होना चाहिए, और ये दुख से कहना पड़ रहा है कि 40% से अधिक लोग वोट देने जाते नहीं है, 40 से ज्यादा वोट देते नहीं है, और कोई अच्छा बुद्धिमान वो आदमी वोट देने जाता नहीं है। तो जैसे लोग है वैसे लोग चुन लेते हैं अपने जैसे। बहुत तो डीमन कर्स है, प्रभुपाद कहते हैं डीमन कर्स इज डीमन कर्स, ये असुर का एक शराप है जो भुगत रहे। किसको दे, किसको वोट दे, जो खड़े हैं उनमें से एक भी देने के लायक नहीं है, 10-10 खून करके सब खड़े हैं, कोई देने के लायक हो तो उसको देना चाहिए ना। हाँ, राजा के बगैर नहीं बदलना चाहिए, इसलिए अपना समाज तैयार करना पड़ेगा। अच्छे लोग थे कैसे नहीं, नहीं थे, आज से 50 के 30 साल पहले अच्छे नेता हुआ करते थे, साइकिल के ऊपर जाया करते थे, देखे थे लोगों ने ऐसे नेताओं को भी, भ्रष्टाचार नहीं था उनका, हृदय में के देश के लिए भी भावना थी, जनता के लिए भावना थी। अब तो जनता बकरा है उनके लिए, जब चाहे तब कुर्बान कर दे, पैसा चाहिए उनका, अब तो सारा बिजनेस पैसे का हो रहा है। बहुत इसकान पॉलिटिकल पार्टी बनाए इसकी अभी आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन कम से कम अगर 10,000 भी हमारे अनुयायी हैं, अगर मानो दिल्ली में वो संगठित हों और एक ही फ्लैग के नीचे खड़े हों, तो कम से कम सब नेता हमारे पास आएंगे तो सही, तो उनको बताएंगे कि शास्त्र में ऐसे लिखा है। तो प्रभुपाद एक बार जाने के लिए तैयार हुए थे इंदिरा गांधी से मिलने, इतना चार्टर लिख के गए थे कि मैं बात करूंगा उनसे कि ऐसे ऐसे होना चाहिए नेता, तो कम से कम वहाँ हमारे को पॉलिटिकल पार्टी बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमको अपने जितने हम हैं उनको संगठित करने की ज़रूरत है, हम संगठित हो जाएं आपस में, तो जहाँ भी हमारे 50 भक्त हैं तो 50 एक जगह कहीं भी होंगे, लोग आपसे पूछने आएंगे तो उनसे आपको प्रचार करने का मौका मिलेगा। तो ऐसे कहीं ना कहीं नो अंकल इज बेड अंकल इज बेटर देन नो अंकल, प्रभुपाद कहते थे भाई, चार हैं उनमें से एक, चार में से जो चार में से एक ठीक है कुछ, उस एक को और ठीक बनाने के लिए हम सहयोग उसका करें, ऐसे तो ये निर्णय यहाँ इस देश के लिए तो हमने नहीं, हम मॉरिशस में अभी थे तो हमने कहा 12 लाख आदमी की आबादी है, उसमें तो 10,000 से अधिक तो भक्त हैं, किसी कॉन्स्टिट्यूंट 3,000 से एक आदमी चुना जाता है, 3,000 से मेंबर होता है, तो हमने कहा आप सब भक्त संगठित होकर एक किसी तरफ जाएंगे वो तो मेंबर हो गई, इस पर आपकी से हो जाएगी, आपको जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उस आदमी को सुधारने की जरूरत है। हम टाइपिस्ट, मैं टाइप सीखूं कि मेरे को किताब लिखना है, नहीं, कोई टाइपिस्ट को भगत बना लो, तो किसी लीडर को आप साधु बना लो। ये तो कलयुग है, ये हिरण्याकश्यप कब मानता था कि भगवान है विष्णु, कंस कब मानता था कि कृष्ण भगवान है, तो ऐसे तो असुरी प्रवृत्ति के लोग सदा से रहे हुए, तो वो चले गए तो खत्म थोड़ी हो गया, अभी भी असुर बहुत हैं, भगवान है कि नहीं है कोई मानने को तैयार नहीं है, क्या करोगे। पब्लिक भेड़ चाल चलती है, एक बहुत बड़ा मैं लिखा हुआ पढ़ रहा था, अरे तो हिरण्याकश्यप राजा था, कंस राजा था, इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो इससे बड़े राजा थे, ये कहाँ के राजा हैं, वो इससे बड़े राजा थे, वो भी ऐसे कहा करते थे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो पहले इतिहास में ऐसे होता आ रहा है, तो नई बात तो कुछ नहीं है, लेकिन इसके ऊपर वोट की पॉलिटिक्स करना ये उससे भी बुरा है, ये उससे भी बुरा है ना, कि तुम भी वही काम करने जा रहे हो लेकिन कपड़े दूसरे पहन के जा रहे हो, काम तो तुम भी वही कर रहे हो, ये भी तो गलत। मैं कहता हूं ये लिखा था, दुर्भाग्य से जिनके पास सत्ता है, जिनके पास सत्ता है दुर्भाग्य से वो उसका सदुपयोग नहीं करते हैं, मैं क्या कहता हूं कि सत्य जिनके पास सत्ता है, ये एक बहुत बड़े विद्वान का लिखा हुआ है, लीडरशिप करेक्टर एंड पावर, पावर का मतलब सत्ता जिसके पास है उसको तो दूसरों के दुख का और दूसरों के जो जो इमोशन है, जो दूसरों के जो जो भावना है उनके लिए कोई उसके पास भाव है नहीं, और वो तो गलत है ही, लेकिन जो ऐसे नेताओं के गलत काम के ऊपर आंखें बंद करके बैठे हुए हैं वो भी उतने के उतने पापी, उतने ही पाप के भाई, और प्रायः 80-90% से ज्यादा लोग जो हो रहा है होने दो हमारा क्या है ऐसे वाले हैं, और ये भी गलत है, कोई सच कहने वाला भी नहीं है, सच कहने वाला कहां है, नहीं उसका से तब होगा, ऐसे मैं कहता हूं 80% लोग ऐसे हैं जो सच नहीं कह रहे हैं, वो आज बाहर आ जाएं तो एक दिन में सब बदल जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं है, सब बदल जाए एक मिनट में, वो गांधी के साथ वो लाखों लोग चल पड़े तो अंग्रेज जहां से चला गया, लेकिन पब्लिक 80% लोग हैं जो जिनको ये भी पता नहीं है क्या हो रहा है, जो हो रहा है होने तो हमारा अपने काम से काम है। ऐसा भी समय आने के ऊपर कोई ऐसा फायदा होगा, ऐसे नहीं है कि भगवान के नेम के विरुद्ध कोई काम ज्यादा देर तक नहीं चल सकता, थोड़े समय के, लेकिन दोनों ही एक जैसा काम कर रहे हैं, इसीलिए नहीं छोड़ देते हैं। बेईमान अपने काम में लगे, सिर्फ पैसा कमाने में लगे हुए हैं, कोई तैयार त्याग करने के लिए तैयार नहीं, कोई कुर्बानी लेने के लिए तैयार नहीं, कोई नहीं तैयार कुर्बानी देने के लिए। हमारा काम चल रहा है ठीक है, तुम हमारी पीठ को जाओ, हम तुम्हारी पीठ को जाएं, काम चलता रहे, नहीं चलने कोई तैयार नहीं है।
वैसे भी हम नेशनलिज्म अपनी चीज थोड़ी करते हैं, हम जो बॉडी कॉन्सेप्ट है ही नहीं हमारा, हम इन चीजों में जाएं क्यों ज्यादा, हम अपने अपने को सुधारें।